डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन ईश्वर एक योद्धा है। सत्र पांच, योद्धा के रूप में ईश्वर का संश्लेषण। 2024 ट्रेम्पर लॉन्गमैन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन है और ईश्वर पर उनकी शिक्षा एक योद्धा है। यह सत्र पांच है, योद्धा के रूप में ईश्वर का संश्लेषण। ठीक है, अब जब हमने बुराई के विरुद्ध परमेश्वर के युद्ध के पांच चरणों की समीक्षा कर ली है, तो आइए पूरी तस्वीर पर कुछ विचार करें। और पहली बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, वह एक योद्धा के रूप में भगवान की बाइबल की तस्वीर की सुसंगतता है। हाँ, हमने विभिन्न चरण देखे हैं। हमने विशेष रूप से देखा है कि नए नियम में भौतिक युद्ध से आध्यात्मिक युद्ध की ओर संक्रमण हुआ है, लेकिन इसका समापन रहस्योद्घाटन की पुस्तक में मानवीय और आध्यात्मिक बुराई के खिलाफ ईश्वर के फैसले के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने नियम से नए नियम में यह परिवर्तन है जो पापियों के रूप में हम पर परमेश्वर के न्याय की दृष्टि खो देता है जब तक कि हम पश्चाताप नहीं करते और उसकी ओर नहीं मुड़ते। और जिस कारण से मैं उस जोर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, वह यह है कि हाल ही में बहुत सारे लेखन हुए हैं जिन्होंने इस चित्र पर पुराने नियम को नए नियम से अलग करने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि यह गलत सोच है। हालांकि मैं उन लोगों का सम्मान कर सकता हूं जो यह तर्क दे रहे हैं, और वे इसे अच्छे विश्वास के साथ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। इससे पहले कि मैं उन पर कुछ और सीधे टिप्पणी करूं, मुझे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह भी बताना चाहिए कि लोगों की स्थिति कैसी है। जैसा कि हमने पिछले 40 वर्षों में दिव्य योद्धा के इस मुद्दे के बारे में सोचा है, वहां है धारणा में परिवर्तन हुआ। मैंने 1981 और 1982 में दिव्य योद्धा विषय पर पेपर देना और लिखना शुरू किया। यह 40 साल से भी पहले की बात है। उस समय लोगों की रुचि थी, लेकिन ईसाइयों के बीच यह विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दा नहीं था। तथाकथित शांति चर्चों के अपवाद के साथ, जैसे मेनोनाइट विद्वान जिन्हें अपनी अवधारणा के साथ एक योद्धा के रूप में भगवान की तस्वीर से निपटना था, हिंसा और शांतिवाद का, और मुझे उनका लेखन बहुत उपयोगी लगा, भले ही मैंने अंतः शांतिवाद पर उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत और अब 9 से 11 के बीच जो हुआ वह है, जब 9 से 11 हुआ तो लोगों ने कट्टरपंथी मुसलमानों को दैवीय हिंसा के बारे में इस तरह बात करते हुए सुना कि उन्हें यहोशू की किताब की याद आ गई, और आप समझ सकते हैं कि इससे उन्हें परेशानी हुई होगी। लेकिन फिर भी हमें युद्ध की नैतिकता के मुद्दे को संबोधित करना होगा, और मैं और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश कुछ हद तक इसके साथ संघर्ष करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, भले ही हमें व्यक्तिगत रूप से धर्मग्रंथ में कुछ समस्याग्रस्त या कठिन लगता है, हमें बाइबल पर अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली को लागू करने से सावधान रहना होगा, और फिर बाइबल में जो हमें पसंद है उसे चुनना और चुनना होगा। यह हमेशा एक खतरा है जिससे हमें बचने की जरूरत है। तो फिर कुछ लेखक हैं, मैं उनमें से कुछ का नाम लूंगा, ग्रेग बॉयड, जिन्होंने द क्रूसिफिक्शन ऑफ द वॉरियर गॉड नामक कृति में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है, द बाइबल टेल्स मी सो में पीटर एन्स, एरिक सीबर्ट और दूसरे। मूल थीसिस यह है कि भले ही पुराने नियम में भगवान को हिंसक बताया गया है और अंततः उन्हें स्वीकार करना होगा, नए नियम में भी ऐसा ही है। हम सिर्फ प्रकाशित वाक्य 19 श्लोक 11 और उसके बाद पढ़ते हैं जो भगवान के वापस आने और न्याय लाने के बारे में बात करता है, समस्त मानवीय और आध्यात्मिक शक्ति पर एक योद्धा के रूप में। हालांकि बाइबल इसके बारे में बात करती है, फिर भी मुझे कहना होगा वे बाइबल में भगवान की एक हिंसक योद्धा की छवि से छुटकारा पाने के तरीके ईजाद करते हैं। और जिस तरह से उदाहरण के लिए ग्रेग बॉयड ऐसा करता है, वह कहता है ईश्वर कौन है, इसका सबसे सटीक प्रतिनिधित्व यीशु है। और मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हो सकता हूँ, शास्त्र यही सिखाते हैं। वह इसे क्वालिफाई करने के लिए आगे बढ़ता है और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि वह इसे क्वालिफाई करता है। वह सिर्फ यीशु नहीं कहता है, वह कहता है ईश्वर कौन है। इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति क्रूस पर यीशु है। और इसलिए फिर वह कहते हैं, बाइबल में भगवान की कोई भी तस्वीर जो क्रूस पर यीशु के उस मानक पर खरी नहीं उतरती है, या तो सांस्कृतिक समायोजन का परिणाम है, और एंस उस दिशा में जाता है जब वह कहता है कि पुराना नियम इज़राइल है। ईश्वर इज़राइल को उन शब्दों में ईश्वर का वर्णन करने की अनुमति देता है जिनसे वे परिचित हैं, लेकिन चित्रित ईश्वर हमेशा वास्तविक ईश्वर नहीं होता है। लेकिन बॉयड की बात करें तो वह कहते हैं, या तो यह सांस्कृतिक समायोजन का परिणाम है, या वह ऐसा कहते हैं, और भले ही वह कहते हैं कि वह त्रुटिहीनता की पुष्टि करते हैं, मैं वास्तव में यह नहीं देखता कि यह एक साथ कैसे चलता है, लेकिन वह कहते हैं, या यह का उत्पाद है मानव लेखक का भ्रष्ट दिमाग। और वह कहते हैं कि विशेष रूप से व्यवस्था विवरण 20 के बारे में, जब वह कहते हैं यहोशू को कभी भी युद्ध के नियमों के बारे में मूसा की बात नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि वास्तव में ईश्वर वह नहीं है। इसके साथ कई अन्य समस्याओं में से एक मूसा है। व्यवस्था विवरण 20 में मूसा को यह सब बनाते हुए चित्रित नहीं किया गया है। इसमें भगवान को मूसा को यह बताते हुए दर्शाया गया है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो दूसरी समस्या यह है कि भले ही बॉयड का सिद्धांत नाटकीय तरीके से पुराने नियम की ईश्वर की गवाही को मूल रूप से कम कर देता है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए वह अपना ध्यान रहस्योद्घाटन पर केंद्रित करता है और वह कहता है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक भी यीशु को चित्रित करता है, लेकिन क्रूस पर यीशु को नहीं। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु के चित्रण में समस्याएं हैं। फिर से बॉयड के काम का मेरा अंतिम मूल्यांकन यह है कि वह बाइबल को समझाने और उजागर करने वाले पाठ के रूप में नहीं, बल्कि हल की जाने वाली समस्या के रूप में देखकर इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। इसलिए मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पुराने नियम से नए नियम तक एक योद्धा के रूप में भगवान के बाइबल चित्रण में एक सुसंगतता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को पुराने नियम और नए नियम के बीच क्रोध प्रबंधन परामर्श मिला हो। पुराने नियम में ईश्वर को प्रेमपूर्ण, न्यायी और एक न्यायाधीश के रूप में दर्शाया गया है, और नए नियम में ईश्वर और यीशु को प्रेमपूर्ण, न्यायी और एक न्यायाधीश के रूप में दर्शाया गया है। तो फिर यहाँ एक रूपता है। हालांकि मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि जब सुसंगतता होती है तो विकास होता है, और फिर आज भौतिक युद्ध से आध्यात्मिक युद्ध में परिवर्तन पर प्रकाश डालता हूँ। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम खुद को चरण 4 में जी रहे हैं, आध्यात्मिक युद्ध का समय, न कि भौतिक युद्ध का, जिसका अर्थ है कि हमें कभी भी सुसमाचार, चर्च या यीशु को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दुर्भाग्य से चर्च ईसा मसीह के नाम पर हिंसा का प्रयोग करता रहा है और कभी कभी अब भी करता है। मेरा मतलब है, हम धर्मयुद्ध के बारे में बात कर सकते हैं, हम इंक्विजिशन के बारे में बात कर सकते हैं, हम भारतीय भूमि में यूरोपीय घुसपैठ को उचित ठहराने के लिए पुराने नियम के अनुच्छेदों के उपयोग के बारे में बात कर सकते हैं, इत्यादि। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे मैंने ऐसे लोगों को सुना है जिन्होंने गर्भपात करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की है, यहाँ तक कि उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी और सुसमाचार के प्रचार में हिंसा का इस्तेमाल किया। ये सभी हिंसा के पापपूर्ण उपयोग हैं और दिव्य योद्धा विषय के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और आप में से अधिकांश लोग शायद इस अनुच्छेद को जानते होंगे। यह पॉल के सबसे प्रसिद्ध अंशों में से एक है, लेकिन इफिसियों 6:10 और उसके बाद का अंत में प्रभु और उसकी शक्तिशाली शक्ति में मजबूत बने। परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के विरुद्ध खड़े हो सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोकों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जब बुराई का दिन आए तो तुम डटे रह सको और सब कुछ करने के बाद भी डटे रह सको। तो अपनी कमर पर सत्य की पेटी बांधकर, धार्मिकता का कवच धारण करके और अपने पैरों में शांति के सुसमाचार से आने वाली तत्परता धारण करके दृढ़ खड़े रहो। इन सब के अलावा विश्वास की ढाल उठाओ जिससे तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ठीक है, इसलिए ईश्वर के सारे कवच पहन लें और प्रार्थना, आत्मा, विश्वास और मोक्ष जैसे शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ लड़े। यह लड़ाई भौतिक हथियारों से जीती जाने वाली लड़ाई नहीं है। और यहाँ इस बिंदु पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमें उस आध्यात्मिक लड़ाई में आमंत्रित किया जा रहा है, मैं पुराने नियम में वापस जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि पुराने नियम में आध्यात्मिक लड़ाई के निश्चित संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि यह नए नियम में ही शुरू हुआ है, बल्कि हमें पहली बार युद्ध में आमंत्रित किया जा रहा है। और मैं यहाँ कुछ स्थानों के बारे में सोच रहा हूँ, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वह मिस्र के विरुद्ध विपत्तियां थीं। और मैं अंत से शुरू करना चाहता हूँ, जब पहलौठे की मृत्यु की पूर्व संध्या पर भगवान यह कहते हैं, इस दिन मैं मिस्र के देवताओं पर विजय प्राप्त करूंगा। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कहानी की शुरुआत में मिस्र के जादूगर कुछ संकेतों और चमत्कारों की नकल करने में सक्षम हैं, जैसे पानी को खून में बदलना और छड़ों को सांपों में बदलना, लेकिन फिर उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो मिस्र के देवता किसे कहा जा रहा है? मैं कहूंगा कि ये दुष्ट राक्षसी आध्यात्मिक शक्तियां और अधिकार हैं जो मानव युद्ध के पीछे हैं। और विद्वानों ने सुझाव दिया है कि विपत्तियां वास्तव में इस तरह से बनाई गई हैं कि वे मिस्र के देवताओं की विशिष्ट अवधारणाओं पर हमला कर रही हैं। चाहे वह नील नदी को रक्त में बदलना हो, जहां आपके पास नील नदी का एक देवता है जो होपी नामक उर्वरता का देवता है, या नाटकीय रूप से सूर्य का अंधकारमय होना, जहां सूर्य देवता, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, मिस्र के देवताओं के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, यदि मुख्य देवता नहीं है। इन्हें इन देवताओं पर विजय के रूप में देखा जाता है। तो मानव संघर्ष के पीछे एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। और फिर एक और मार्ग दानियल अध्याय 10 में पाया जाता है, और यह चौथे और अंतिम सर्वनाशकारी दर्शन की शुरुआत है जो दानियल हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसका आरंभ फारस के राजा कुसरू के तीसरे वर्ष में दानियल को एक रहस्योद्घाटन दिया गया, जिसे बेलतशस्सर कहा जाता था। इसका संदेश सत्य था और इसका संबंध एक महान युद्ध से था। संदेश की समझ उसे एक दर्शन से हुई। उस समय मैं दानियल ने 3 सप्ताह तक शोक मनाया। मैंने 3 सप्ताह पूरे होने तक कोई पसंदीदा भोजन नहीं खाया, कोई मांस या शराब नहीं खाया, अपने होठों को छुआ और मैंने कोई लोशन भी नहीं लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैंने आंख उठाकर क्या देखा, और मलमल पहने हुए एक पुरुष मेरे सामने खड़ा है। और जैसे जैसे वर्णन आगे बढ़ेगा, हम जल्द ही समझ जाएंगे कि यह एक दिव्य दूत, एक दिव्य आकृति है। और बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय क्यों लगा। याद रखें, दानियल 3 सप्ताह से इंतजार कर रहा है। पद 12 कहता है, हे दानियल, तू मत डर, जब से तूने पहले ही दिन से समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का मन बनाया है, आपकी बातें सुनी गईं और मैं उनके जवाब में आया हूँ। परंतु फारसी राज्य के राजकुमार ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। तब मीकाएल, जो मुख्य हाकिमों में से एक था, मेरी सहायता के लिए आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के यहां बंदी था। अब मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि भविष्य में तुम्हारी प्रजा का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि माइकल वह देवदूत है जो इसराइल से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जो आता है और मदद करता है। लेकिन लगभग निश्चित रूप से गैब्रियल डैनियल तक पहुंच गया, लेकिन उस रास्ते से लड़ते हुए जिसे मैं फारस का आध्यात्मिक राजकुमार कहूंगा। तो मानव और डैनियल के पीछे एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। और अध्याय के अंत में गैब्रियल कहेगा, और अब हमें ग्रीस के आध्यात्मिक राजकुमार से लड़ना होगा। तो पुराने नियम में एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर डैनियल को उस लड़ाई में उसी तरह आमंत्रित नहीं किया जा रहा है जिस तरह हमें आध्यात्मिक लड़ाई में आमंत्रित किया जा रहा है। और वह आध्यात्मिक लड़ाई कई रूप ले सकती है। आप जानते हैं, कोई भी हमारी दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। दूसरा, सुसमाचार प्रचार का कार्य हो सकता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और सुसमाचार साझा करते हैं तो आपको इस भाषा से सावधान रहना होगा। लेकिन पॉल उस भाषा का उपयोग करता है जैसे जब कोई ईसाई बन जाता है तो पुराना व्यक्ति मर जाता है और नया व्यक्ति उठ खड़ा होता है। इसलिए आपको उस भाषा से सावधान रहना होगा ताकि यह प्रचार के जबरदस्ती रूप को जन्म न दे। लेकिन जितने अधिक लोग ईसाई बनते हैं, दुष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साम्राज्य को उतना ही अधिक नुकसान होता है। और फिर आखिरकार हमारे अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। मैं यहां रोमियो अध्याय 7 के एक अंश के बारे में सोच रहा हूं, जो उस संघर्ष के बारे में बात करता है कि हमें पाप नहीं करना है, और इसलिए यह एक लंबा मार्ग है। मैं इसे श्लोक 14 में लूंगा। हम जानते हैं कि कानून आध्यात्मिक है, लेकिन मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, पाप के गुलाम के रूप में बेचा गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करता हूं, जो करना चाहता हूं वह नहीं करता, लेकिन जिस चीज से मुझे नफरत है मैं वही करता हूं। और यदि मैं वह करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं मानता हूं कि कानून जैसा है वैसा ही अच्छा है। अब ऐसा करने वाला मैं स्वयं नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर रहना पाप है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भलाई मुझ में नहीं वह तो मेरे पापी स्वभाव में है। क्योंकि मुझे भलाई करने की इच्छा तो है, परंतु मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि जो भलाई मैं करना चाहता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वही करता रहता हूं। अब यदि मैं वह करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो वह मैं नहीं करता जो वह करता है, बल्कि मुझ में रहने वाला पाप ऐसा करता है। इसलिए मुझे यह कानून काम में लगता है। हालांकि मैं अच्छा करना चाहता हूं, बुराई तो मेरे साथ ही है, क्योंकि मैं अपने अंतःकरण में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे अंदर एक और कानून काम कर रहा है, जो मेरे मन के कानून के खिलाफ युद्ध कर रहा है और मुझे मेरे भीतर काम कर रहे पाप के कानून का कैदी बना रहा है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, जो मुझे इस मरने वाले शरीर से कौन छुड़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे बचाता है। तो फिर मैं स्वयं अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था का दास हूं, परंतु अपने पापी स्वभाव से पाप की व्यवस्था का दास हूं। अब मुझे पता है कि इस बात पर बहस चल रही है कि क्या यह किसी के ईसाई होने से पहले या उसके ईसाई होने के बाद का वर्णन है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में पाप के साथ संघर्ष है, और इसलिए मैं अपने दिव्य योद्धा को उस पाप पर विजय पाने में मदद करने के लिए बुला सकता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि पॉल की युद्ध भाषा बहुत उपयुक्त है। तो फिर भी इसराइल के मांस और रक्त के दुश्मनों के खिलाफ पुराने नियम की हिंसा की नैतिकता का यह सवाल है, और यह एक कठिन प्रश्न है, खासकर जब यह हेरेम के विचार और इसके निवासियों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित शहरों के पूर्ण विनाश की बात आती है। हम जानते हैं कि इसे कभी भी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया था, लेकिन इसके परिणाम ऐसे हुए जिनके बारे में भगवान ने चेतावनी दी थी, यानी कि कनानी लोगों ने कई इसराइलियों की सोच को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने बाल की पूजा करनी शुरू कर दी और पाप इत्यादि करने लगे। लेकिन फिर भी यह एक अत्यंत कठिन प्रश्न है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जैसे हमारे दिन में, जहां हम न्याय के बारे में बहुत चिंतित हैं, लोगों को उनके अपराधों के लिए वह सजा मिलती देख रहे हैं जिसके वे हकदार हैं, वास्तव में हम यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ईश्वर का उचित मामला है, लोगों को उनके पापों की सजा देना। और मुझे मिरोस्लाव वोल्फ का एक विचार वास्तव में मददगार लगा, जो अब येल में और उससे पहले फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी में लंबे समय तक प्रोफेसर थे, जो यूगोस्लाविया कहलाने वाले क्षेत्र में पलेबधे थे, जो सर्ब और क्रोएशियाई लोगों के बीच युद्ध से तबाह हो गया था। और ध्यान दें कि इससे उन्हें बाइबल में ईश्वर की जो तस्वीर मिलती है उसे समझने में कैसे मदद मिली। वह यह कहता है, मैं सोचता था कि क्रोध परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्या ईश्वर प्रेम नहीं है? क्या दिव्य प्रेम क्रोध से परे नहीं होना चाहिए? ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है। यही कारण है कि परमेश्वर उनमें से कुछ के प्रति क्रोधित है। ईश्वर के क्रोध के विचार के प्रति मेरा अंतिम प्रतिरोध पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध में हताहत होना था, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ। कुछ अनुमानों के अनुसार 200,000 लोग मारे गए और 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। मेरे गांव और शहर नष्ट हो गए। मेरे लोग दिन ब दिन गोलाबारी करते हैं। उनमें से कुछ के साथ कल्पना से भी परे क्रूरता बरती गई, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भगवान क्रोधित नहीं होंगे। मैं पिछली सदी के आखिरी दशक के रवांडा के बारे में सोचता हूँ, जहाँ 100 दिनों में 800,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नरसंहार पर भगवान की क्या प्रतिक्रिया थी? अपराधियों पर दादा की तरह दया करके, नरसंहार की निंदा करने से इनकार करके, बल्कि अपराधियों की बुनियादी अच्छाई की पुष्टि करके, क्या परमेश्वर उन पर भयंकर क्रोधित नहीं था? हालांकि मैं ईश्वर के क्रोध के विचार की अशोभनीयता के बारे में शिकायत करता था, मुझे लगा कि मुझे ऐसे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना होगा जो दुनिया की बुराई को देखकर क्रोधित नहीं होता। ईश्वर प्रेम होते हुए भी क्रोधी नहीं है। ईश्वर क्रोधी है क्योंकि ईश्वर प्रेम है। फिर मुझे नहीं लगता कि यह दिव्य योद्धा विषय के साथ हमारी सभी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जो हमें बाइबल की तस्वीर पर रखना चाहिए। मैं इस बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि अंतिम निर्णय की प्रत्याशा के रूप में हमें पुराने नियम में युद्ध के बारे में कैसे सोचना चाहिए। जैसे कि यदि आप चाहें तो अंतिम न्याय का एक पूर्वावलोकन जो भगवान हमें अंतिम न्याय के बारे में चेतावनी देने के लिए देता है, और मेरा मतलब यह है, अतीत में मेरे एक शिक्षक मेरेडिथ क्लेन ने वर्णन किया था कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह सामान्य अनुग्रह की अवधि में अंतस्मय की नैतिकता की घुसपैठ है। सामान्य अनुग्रह से धर्मशास्त्रियों का तात्पर्य यह है कि ईश्वर इस जीवन में गेहूं को भूसी से अलग नहीं करता है। बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं। लेकिन बाइबल की तस्वीर यह है कि हर किसी को उसके बाद के जीवन में वही मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। हालांकि वह जो कहता है वह यह है कि विजय जैसी कोई चीज अंत समय की नैतिकता का अतिक्रमण है। यह उस तरह के फैसले का पूर्वावलोकन है जो उन लोगों पर आएगा जो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर का विरोध करते हैं, ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं, अन्य लोगों को चोट पहुंचाते हैं जो यीशु की ओर नहीं मुड़ते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि पुराने नियम के इन ग्रंथों के बारे में सोचने का यह एक वैध तरीका है। इसलिए मुझे आशा है कि यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र में दिव्य योद्धा विषय के व्यापक दायरे और विकास को देखने में आपके लिए सहायक रहा होगा। और फिर यह उत्पत्ति 3 से प्रकाशित वाक्य के अंत तक चलता है, और इसलिए यह हमारे लिए समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, हमारे लिए यह जानना कि यह हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है और यह हमें ईश्वर के बारे में क्या बताता है। हमने इस सत्र की शुरुआत उन अनेक रूपकों के बारे में बात करके की जिनका उपयोग हमारे लिए ईश्वर का वर्णन करने के लिए किया जाता है, और उनमें से कोई भी पूरी तस्वीर के करीब कुछ भी नहीं खींच पाता, लेकिन यह उस तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम इस तथ्य के साथ इस पर विचार करते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे राजा हैं, भगवान हमारे पति हैं, और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं ईश्वर कौन है कि इन महत्वपूर्ण रूपकों के अध्ययन के लिए आपकी सराहना करता हूँ। यह ईश्वर एक योद्धा है, पर अपनी शिक्षा में डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन है। यह डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन है और ईश्वर पर उनकी शिक्षा एक योद्धा है। यह सत्र 5 है, योद्धा के रूप में ईश्वर का संश्लेषण।